सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येषिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् पञ्चपरमेश्वरी भगवान् की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पांचवा प्रश्न आया है जैन धर्म का उद्भव कब हुआ एवं उसके संस्थापक कौन हैं। उत्तर दिया गया है जैन धर्म अनादि निधन है अतः इसके उद्भव यानी उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अनादि निधन है। अनादि निधन कहने पर कहां से उत्पन्न हुआ यह प्रश्न उठता ही नहीं। इसके संस्थापक तीर्थंकर ऋषभदेव एवं भगवान महावीर भी नहीं है अपितु समय समय पर उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर इस धर्म के प्रवर्तक विस्तारक होते हैं। लोक में ऐसा प्रचार है कि जैन धर्म का धर्म के संस्थापक महावीर भगवान को कहते हैं या तो आदिनाथ भगवान को कहते हैं। ये संस्थापक नहीं है। संस्थापना किसको कहते हैं? पहले नहीं था और नया कुछ हमने खोजा पाया उसको कहा और उन तत्वों की हमने स्थापना की और ऐसे उनके संबंध में विचार करे ऐसा आचरण करे। इस प्रकार एक जैसे किसी देश को चलने के लिए संविधान की रचना होती है ना उस प्रकार से जैन धर्म अनादि होने से इसकी स्थापना कोई भी नहीं कर सकते। इस निसर्ग में धर्म स्वयं है। स्वयं स्थित इस धर्म को केवल ज्ञान के द्वारा समझकर जानकर उसका उपदेश दिया जा सकता है। सृष्टि के अनेक रहस्यों को सृष्टि के अनेक प्रकार के सिद्धांतों को तत्वों को हम अपने ज्ञान के माध्यम से जान तो सकते हैं। जानने में कोई आपत्ति नहीं जान सकते किंतु उन तत्वों को हमने जान लिया तो क्या संस्थापना की तत्व क्या हमसे संस्थापित हो सकते हैं? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्व हैं, ये कहाँ हैं? है कहाँ ये? आप कहेंगे शास्त्रों में है। शास्त्रों में भी नहीं है वो, ये निसर्ग में सभी तत्व हैं। आपकी आत्मा, दूसरे की आत्मा और दूसरे की आत्मा, देवों की आत्मा, नारकियों की आत्मा, सब संसारी आत्माएं हैं क्या? नहीं, ये सभी जीव है क्या? नहीं, वो जीव तत्व, वह तत्व दो प्रकार का, शुद्ध तत्व और अशुद्ध तत्व। यदि जीव अशुद्ध है तो अशुद्ध तत्व है, शुद्ध है तो शुद्ध तत्व। तो शुद्ध जीव तत्वों को देखना चाहते हैं तो ऊपर देखो, सिद्ध परमेष्टियों की तरफ, और अशुद्ध जीव तत्वों की ओर देखना चाहते हैं तो कहीं भी देखो, जो भी दिखे वो सब अशुद्ध तत्व है। अरहंत भगवान को भी देखो, अशुद्ध है। सिद्ध परमेष्टि अकेले ही शुद्ध है। जीवत्व की अपेक्षा से शुद्ध जीव तत्व उनके पास पाया जाता है, हमारे पास सब अशुद्ध, क्योंकि जीव अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग है, कर्म अलग है, जीव अलग है, जीवों के अशुद्ध भाव अलग हैं। ऐसे भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये अलग अलग होने से जीव के साथ अगर इन तीन में से एक का भी सद्भाव है तो जीव को अशुद्ध ही कहेंगे। जीव को कषाय उत्पन्न होती है, कषाय उत्पन्न हो रही है, तो जिस जीव को कषाय उत्पन्न हो रही है वो कौन सा तत्व? शुद्ध है क्या अशुद्ध? अशुद्ध है। जीव जानता है लेकिन सब कुछ नहीं जान पा रहा है, ये अज्ञान है। अज्ञानी जीव में अज्ञान होता है, ये अज्ञान तत्व कौन सा है? अशुद्ध है। अज्ञान, मिथ्यात्व, राग और द्वेष, ये जीव के भीतर यदि पाए जाते हैं तो जीव वह अशुद्ध तत्व की कोटि में रहेगा। सात तत्व हैं, जीव के बाद अजीव तत्व भी है। जीव को अशुद्ध बनने का कारण क्या बना? अजीव ही बना। जीव ने अजीव तत्व को ग्रहण किया, किन भावों से ग्रहण किया? राग भाव से, द्वेष भाव से, मिथ्यात्व भाव से। मिथ्यात्व भाव भी है, मिथ्यात्व द्रव्य भी है, द्रव्य कर्म भी है। मिथ्यात्व भाव से, अज्ञान भाव से, राग द्वेष आदि के भाव से, पर अचेतन तत्व को जीव ने ग्रहण किया। राग द्वेष करते ही कर्म चारों ओर से आकर के आत्मा में घुल मिल जाते हैं। अजीव आ गया तो हम अशुद्ध हो गए, और राग द्वेष जो हुए वो कहाँ उत्पन्न हो गए? अजीव में उत्पन्न हुए कि आत्मा में? आत्मा में उत्पन्न हो गए। और ये आत्मा में उत्पन्न हो गए तो क्यों हो गए? उसका निमित्त क्या? उसका भी कारण है। क्या कारण है? जीव अपने पूर्व में बंधे हुए कर्म के उदय में, कर्म के उदय में राग द्वेष करता है। कर्म का उदय ना हो तो राग द्वेष होगा ही नहीं, राग द्वेष होने के लिए कौन सा कर्म का उदय चाहिए? हाँ? आठ कर्म में से कौन सा कर्म चाहिए? मोहनी कर्म चाहिए। या वो मोहनी कर्म पूर्व में कभी न कभी बंधा हुआ है ना, वो द्रव्य कर्म है ना, वो अचेतन है ना, वो पुद्गल है ना, वो कभी न कभी किसी जीव के द्वारा बंधा हुआ है, जीव ने ही बांधा है। लेकिन जब बांधा था किस कर्म के उदय में बांधा था? मोहनी कर्म के उदय में। और वह मोहनी कर्म का उदय तब भी था जब उदय आया, तब उदय में आया। पर उदय में आने वाला कर्म वर्तमान का होता है कि पहले बंधा हुआ होता है? पहले बंधा हुआ होता है। पूर्व में बंधा हुआ कर्म उदय में आया, उदय में आने से उसके निमित्त से जीव वीतराग नहीं रह पाया, अपने परिणामों को विशुद्ध नहीं रख पाया और राग द्वेष कर लिया और कर्मों का पुनः नया कर्मों का बंध हो गया, नए कर्मों का बंध हो गया। इस प्रकार कर्म के उदय में राग द्वेष का होना, राग द्वेष के उदय होने से पुनः नए कर्मों का बंध होना, ये कब से चल रहा है? अनादि से। ऐसा विचार किया जा सकता है क्या कि जीव राग द्वेष कब से करने लगा? ऐसा प्रश्न किया जा सकता है? ये कब से इसको बीमारी आई राग द्वेष करने की? राग द्वेष कब से है? अनादि से। और राग द्वेष होने के लिए कर्म चाहिए, कर्म का उदय चाहिए, मोहनी कर्म का, वो कब से है? वो भी अनादि से। जो पूछो सब सनातन है। धर्म सनातन, अधर्म समाज सनातन, राग द्वेष सनातन, द्रव्य कर्म सनातन, शरीर सनातन, ये सब अनादि काल से चल रहा है। खदान में पड़ा हुआ सोना जैसा रहता है वैसा ही संसार चतुर्गति में संसारी जीव रहते हैं। कोई भी अनादि काल के पीछे शुद्ध नहीं था। अशुद्ध कब से हुआ? अनादि काल के पीछे हुआ। अनादि से है कहना पड़ेगा, हुआ ये कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो उससे पहले शुद्ध था और अनादि काल के पीछे अशुद्ध हुआ और फिर बाद में ये संसार बन गया, ऐसा है क्या? यदि ये कहेंगे कि अनादि काल के पीछे जीव तो शुद्ध था और बाद में अशुद्ध हुआ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जीव यदि एक बार शुद्ध हो गया तो अशुद्ध हो ही नहीं सकता। जीव को यदि शुद्ध कहेंगे तो उस समय मोहनी कर्म का उदय के बिना राग द्वेष कैसे किया उसने? प्रश्न उठेगा। शुद्ध ही रहेगा वो। मोहनी कर्म के उदय के बिना राग द्वेष नहीं होते। और जीव को यदि शुद्ध कहेंगे तो राग द्वेष भी नहीं थे पहले और मोहनी कर्म का उदय भी नहीं था। तो मोहनी कर्म का उदय नहीं था तो फिर आठों कर्म भी नहीं थे, क्योंकि आठों कर्मों का जो बंध होता है वो मोहनी कर्म के वजह से ही होता है। आठ कर्म नहीं थे ये कहेंगे तो राग द्वेष कैसे हुए, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो उसका क्या उत्तर? फिर सिद्धों को भी होना चाहिए। यदि आपको अनादि काल के पीछे राग द्वेष हुए थे, पहला मैं शुद्ध ही था, राग द्वेष होने लगा तब मोहनी कर्म का बंध हुआ, ऐसा कहेंगे तो मोहनी कर्म का बंध होने के लिए भी मोहनी कर्म का उदय आवश्यक है। नया मोहनी कर्म का, न्यू, अभी वर्तमान में नया मोहनी कर्म का बंद होने के लिए भी मोहनी कर्म का उदय पहले का चाहिए। तो पहले का मोहनी कर्म का उदय नहीं है तो फिर आपने नया कर्म को कैसे बंद किया रागद्वेष करके? और रागद्वेष भी नहीं हो सकते मोहिनी कर्म के उदय के बिना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले कभी शुद्ध थे और बाद में अशुद्ध बन गए, ऐसा नहीं। राग द्वेष द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये अनादि से हैं, अनादि से जीव के साथ लगे हुए हैं। कब से स्टार्टिंग इसका है इसको खोज नहीं सकते, जैसा उनको खोजना संभव नहीं जो सबसे पहले मोक्ष कौन गए, उनको खोजना संभव है क्या? सबसे पहले मोक्ष कौन गए? महाराज अनंत वीर गए, अनंत वीर तो अभी गए हैं। अनादि काल के पीछे, ये युग के आदि में, चतुर्थ काल के आदि में आदिनाथ भगवान से भी पहले मोक्ष जाने वाले अनंत वीर हुए हैं। ये प्रथम मोक्षगामी जीव है इस काल की अपेक्षा से। ये अवसर्पिणी है, अवसर्पिणी के तृतीय काल में आदिनाथ भगवान जन्म, दीक्षा तृतीय काल में हुई, केवल ज्ञान भी तृतीय काल में ही हुआ, मोक्ष भी तृतीय काल में हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं आदिनाथ भगवान तृतीय काल में जन्म लेकर सबसे पहले दिगंबर मुनि बन गए। दिगंबर मुनि तो बाद में ही सब बने हैं, उनके टाइम के लोग 4000 मुनि। आदिनाथ भगवान को जब वैराग्य हुआ 4000 राजा लोग मुनि बन गए, मुनि बन गए। पर प्रथम मुनि वो कौन बन गए? आदिनाथ भगवान बन गए। पर ऐसा नियम है क्या कि पहले जो मुनि दीक्षा लेते हैं वही मोक्ष जाते हैं, बाद में जो दीक्षा ले उनको मोक्ष होता है फिर बाद में? ऐसा नहीं, दीक्षा कभी भी कोई भी ले सकता है, लेकिन मोक्ष जाने का जो काल है अपने अपने पुरुषार्थ पर डिपेंड होता है। जो अच्छी तरह से आत्मध्यान करेगा उनको पहला मोक्ष मिलेगा, दीक्षा कभी भी लिए हों। भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया मुनि बनने के बाद, और आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगे उनके पिता पिता होने से। क्या बात हो गई, भले ही पिता रहे हों, पिता को पहले केवल ज्ञान होता है बाद में, ऐसा कुछ भी शर्त मोक्ष मार्ग में नहीं है। जीव अपने भावों से सदा सदा काल के लिए स्वतंत्र है, दीक्षा लेने में स्वतंत्र है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में स्वतंत्र है, मोक्ष जाने में स्वतंत्र है, केवल ज्ञान प्राप्त करने में स्वतंत्र है। पर की अपेक्षा से यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। पर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं, हम स्वयं सब में स्वतंत्र हैं। परतंत्र कहीं है धर्म की, धर्म करने के लिए कहीं भी परतंत्रता है क्या? बोलो, आप लोग परतंत्र हो सकते हैं, लेकिन वह परतंत्र होना वस्तुतः वो हमारी कमजोरी हो सकती, पर परतंत्रता जीव को हो ही नहीं सकती। महाराज दीक्षा लेना हो तो घर में तो पूछना पड़ता है, ये व्यावहारिक परतंत्रता है। पर वस्तुतः देखो, यह व्यावहारिक परतंत्रता भी यदि वह निभाना नहीं चाहता तो क्या मुनि नहीं बन सकता, दीक्षा नहीं ले सकता? तीर्थंकर किसको देखकर पूछ करके दीक्षा लेते हैं? वो आत्मा से पूछते हैं, वैराग्य हुआ है तो अभी निकलना है, नहीं हुआ है तो रहना है। तीर्थंकर किसी से नहीं पूछते, लेकिन अपन लोग पूछते हैं। ही व्यवहार है, परंतु इस व्यवहार के निभाने पर ही दीक्षा होती है और छठा सप्तम गुणस्थान होता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा होता तो मोक्ष भी नहीं जाते। मोक्ष जाते समय में भी पूछना पड़ता तीर्थंकरों को, मैं मोक्ष जाऊं क्या? तब तीर्थंकरों का परमिशन लेना पड़ता। दीक्षा लेते समय माता पिता का, बड़ों का, और मोक्ष जाते समय केवल ज्ञानियों से परमिशन लेकर के जाना पड़ता। ऐसा कुछ भी नहीं है, जीव इतना स्वतंत्र है कि वह कुछ भी कर सकता है अपने भावों से। क्या कहा इन्होंने? जैन धर्म अनादि निधन है, अतः इसके उद्भव का, उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके संस्थापक तीर्थंकर वृषभदेव या महावीर भगवान भी नहीं है, अपितु समय समय पर उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर इस धर्म के प्रवर्तक, विस्तारक या उपदेशक होते हैं। उपदेश दिया जाता है धर्म का। धर्म सृष्टि में विद्यमान है। धर्म किसको कहते हैं ये तो समझ में आ गए, वो कहाँ है? सृष्टि में विद्यमान है। सम्यक दर्शन कहाँ है? जीवों के भीतर है। मिथ्या दर्शन कहाँ है? जीवों के भीतर है। धर्म भी जीवों के भीतर है, अधर्म भी जीवों के भीतर है, और ये जीवों के भीतर है। ऐसा उपदेश देने से कहीं हम धर्म के संस्थापक बन गए? वो तो पहले से ही था। आत्मा का स्वभाव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये कहेंगे तो ये स्वभाव से ही है, अनादिकाल से। उसी का विस्तार, उसी का उपदेश तीर्थंकर भगवान देते हैं, इसलिए वे उपदेशक ही कहलाते हैं, संस्थापक नहीं। हाँ, अन्य अन्य जो विचारधारा वाले होते हैं वे अपनी विचारधारा के अनुसार अपने पीछे लोगों को चला लेते हैं। तुम ऐसा चलो ये उद्धार होगा, तुम ऐसे चलो तुमको कल्याण होगा। इस प्रकार छद्मस्त जीव उपदेश दे करके किसी भी एक मार्ग की संस्थापना वो कर सकता, लेकिन सच्चे धर्म की संस्थापना कभी भी हो नहीं सकती। सच्चे धर्म की संस्थापना कैसे होगी? नहीं हो सकती। अब अपन आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, जैन धर्म की अपनी प्रमुख मौलिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैन धर्म जीतने वालों का धर्म, जो जीतना चाहते हैं उनका धर्म, जैन धर्म। पूछा है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैन धर्म की प्रमुख मौलिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषता? अनेकांत, ये मौलिक विशेषता। शाद्वाद, अपरिग्रहवाद, अहिंसा, वस्तु की स्वतंत्रता, अवतारवाद का निषेध। अवतारवाद का निषेध, अवतारवाद यानी पुनः पुनः जन्म लेना, एक बार कहीं जाने पर, मोक्षादि जाने पर, देवादि बनने पर, मोक्षादि जाने पर पुनः जीव संसार में जन्म लेता है, ऐसा कहना, ये ठीक है क्या गलत है? तो अवतारवाद इसी को बोलते हैं, अवतारवाद। एक बार मोक्ष जाने के बाद जीव संसार में नहीं आता। इनको हम अपन समझेंगे। पहले नंबर में है अनेकांत। अनेक का अर्थ है नाना और अंत का अर्थ है धर्म अथवा स्वभाव। अंत का क्या अर्थ है? धर्म अथवा स्वभाव। स्वभाव कहो धर्म कहो एक ही बात है, अंत कहो स्वभाव कहो एक ही बात है, अंत कहो धर्म कहो एक ही बात है। अंत अपन व्यवहार में किसको बोलते हैं? सेवट को अंत बोलते हैं, सेवट लास्ट। लेकिन यहां पर क्या अर्थ है? अंत का अर्थ धर्म है। और अनेकांत शब्द जो बना है वो अनेक और अंत ये दोनों मिल करके अनेकांत यह शब्द बन गया। अनेकांत क्या अर्थ हुआ? अनेक धर्म। अनेक धर्म यानी दुनिया में जितने धर्म है वो सब, ऐसा अर्थ नहीं। अनेक यानी अनेक नाना बहुत, अंत यानी धर्म। धर्म बहुत सारे होते हैं। कहां पर होते हैं प्रश्न उठता है। द्रव्य में होते, धर्म द्रव्य को छोड़कर के अन्यत्र रहता नहीं। द्रव्य कितने हैं? छह द्रव्य। छह द्रव्यों में अनंत धर्म पाए जाते हैं। छह द्रव्य जीव द्रव्य, इसमें अनंत धर्म है। अनंत अंत है। अनंत और अंत, अनंतानंत। वस्तु में यानी पदार्थ में यानी द्रव्य में, द्रव्य में अनंत अनंत गुण होते हैं, अनंत अनंत धर्म होते हैं। अब गुण कहो धर्म कहो, उनको एक और शब्द ये दे सकते हैं कि शक्ति कहो, एक ही बात है। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिशाली है, अनंत शक्ति वाला है, ऐसा कहो एक ही बात है। अनंत गुण वाला है, अनंत गुणधर्म वाला है, अनंत अंत वाला है। अंत यानी गुणधर्म, शक्ति बल धर्म, ऐसे अनेक और अंत ये दोनों शब्द मिलकर के अनेकांत शब्द की उत्पत्ति हुई। जैन धर्म किस सिद्धांत वाला है ये जब प्रश्न उठता है तो सामान्य रूप से सभी हम ये उत्तर देते हैं, जैन धर्म अनेकांत सिद्धांत वाला है। अनेकांत सिद्धांत वाला, सिद्धांत ही अनेकांत रूप है। और जैन धर्म में अनेकांत नहीं होता तो जैन धर्म एकांत होता। अनेकांत रूप नहीं होता तो एकांत रूप होता। अनेकांत है इसलिए एकांत नहीं है। तो जैन धर्म अनेकांत रूप है का मतलब क्या? अनेकांत एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? प्रत्येक द्रव्य को जब हम लेकर के विचार करते हैं, उस द्रव्य को लेकर के जब हम विचारक बनते जाते हैं तो वह द्रव्य ऐसा लगता है कि उसमें एक धर्म नहीं है, उसमें अनंत धर्म है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्मों को स्वीकार करना चाहिए। एक धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए पानी कैसा है, शीतल है क्या? पानी का स्वभाव शीतल है या गर्म है? शीतल है। गर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। गर्म होने पर गर्म है क्या? नहीं गर्म, तब भी शीतल कहेंगे क्या? तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पानी गर्म भी है, गर्म होने से गर्म भी है और शीतल होने से शीतल भी है। दोनों स्वीकार करना पड़ेगा कि एक ही? या तो ये स्वीकार कर लो कि पानी गर्म ही होता है, ये एकांतवाद हो गया। पानी शीतल ही होता है, गर्म होता नहीं, ऐसा स्वीकार कर लो तो वो भी एकांत है। इसी प्रकार आत्मा, आत्मा वस्तुतः पानी की तरह, पानी मूल में अपने स्वभाव के दृष्टिकोण से शीतल है, पर अग्नि के संपर्क के कारण वो अपने स्वभाव को छोड़ भी सकता है, परिवर्तित हो सकता है, रूपांतरित हो सकता है, वह गर्म भी होता है। वैसे आत्मा भी स्वभाव से ज्ञानी है। स्वभाव से क्या है? ये ज्ञानी है। और विभाव से अज्ञानी। तो एक ही आत्मा ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, यही तो अनेकांतता है, यही तो अनेक गुणधर्म वाला है। अज्ञान की भी उसमें शक्ति है तो ज्ञान की भी शक्ति है। ज्ञान की शक्ति होती तो केवल ज्ञान की ही शक्ति होती, एक ही शक्ति होती, उसमें अज्ञान उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर हम उस संसार में संसारी जीवों को जब देखते हैं तो ज्ञानी ही दिखाई देते हैं और अज्ञानी ही दिखाई देते हैं। जब हम अरहंत की ओर देखते हैं, अरहंत भगवान की ओर, तो बहुत बड़े ज्ञानी दिखते हैं, और जब हम अपनी ओर देखते हैं तो हम अज्ञानी दिखाई देते हैं। अरहंत तो ज्ञानी है, उनमें अज्ञान है क्या? नहीं है। हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान है क्या? हमें ज्ञान है क्या? कहाँ है? अज्ञान है तो ज्ञान कहाँ है? एक समय में एक ही रहता है। अज्ञान के रहते हुए ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का मतलब वहां अज्ञान पाया नहीं जाना चाहिए, उसका नाम ज्ञान। ऐसा मत सोचो कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक ज्ञानी हैं और मति श्रुत ज्ञान तो अपने पास है, हम तो ज्ञानी हैं, अज्ञानी कैसे? देखो, आपको अनेकांत से ये समझाया गया है, आप तो अज्ञानी रहेंगे 12वें गुणस्थान तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक वस्तुतः अज्ञानी रहेंगे। परंतु अज्ञान अवस्था में भी आपको ज्ञानी कहा जाता है, किसकी अपेक्षा से? कि आपके पास मिथ्या ज्ञान नहीं है और सम्यक ज्ञान है, इस अपेक्षा से आप ज्ञानी हैं। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी। सम्यक दृष्टि को अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, चौथे गुणस्थान में है, चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक है, फिर भी इनको ज्ञानी भी कहा जाता है और अज्ञानी भी कहा जाता है। अज्ञानी जो कहा जाता है वह गुणस्थानों की श्रेणियों की अपेक्षा से भी कथन है। जब वो 12वें गुणस्थान में चला जाता है तो वहां पर वे वीतरागी हैं, इस अपेक्षा से ज्ञानी, और एक रागी हैं तो वीतरागी के अपेक्षा से रागी जीव अज्ञानी, रागी अज्ञानी है। सम्यक दृष्टि के अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी और सम्यक दृष्टि ज्ञानी। अब इसमें भी राग का और वीत राग का लगाया जाता है। वीत रागी की अपेक्षा से रागी जीव अज्ञानी और वीत रागी जीव ज्ञानी, किंतु वीतरागी होकर के भी वे वीतरागी सातवें गुणस्थान से लेकर के बारहवें गुणस्थान तक वो रागी की अपेक्षा से ही ज्ञानी है, पर केवली भगवान की अपेक्षा से अज्ञानी है। यही अनेकांत है। अनेकांत धर्म का कथन अनेकांत से करना, यानी सभी अपेक्षाओं को सामने रख करके कथन करना। जहां जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप कथन करना, ये अनेकांत धर्म का कथन है। अब इस कथन को करने के लिए कथन पद्धति को भी अपनाया जाता है। उस पद्धति का नाम शाद्वाद ऐसा कहा है। क्या कहा है? शाद्वाद। अनेकांत वस्तु का स्वभाव गुणधर्म है। कोई भी वस्तु एकांत रूप नहीं होता। जल है, अग्नि है, आत्माएं हैं, धर्म द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, काल द्रव्य है, जो भी छह द्रव्य हैं, सभी अनेकांत रूप हैं। इन वस्तुओं को जानते समय, विचार करते समय वस्तुओं के एक पक्ष को ही, एक धर्म को ही हम पकड़ बैठेंगे तो हमारा ज्ञान एकांत रूप हो जाता है। क्या वस्तु एकांत रूप होता है? पदार्थ एकांत रूप होता है? नहीं, पदार्थ तो अनंत काल से वो अनेकांत रूप ही है, पर वस्तु के संबंध में विचारक जो होता है वह एकांत से भी विचार कर सकता है और अनेकांत से भी विचार कर सकता है। वो यदि वस्तु को अनंत धर्मात्मक मानेगा, अनंत धर्मात्मक स्वीकार करेगा, तो विचारक अनेकांतवादी और वस्तु भी अनेकांत रूप, अनेकांत रूप है। अगर विचारक उस वस्तु के संबंध में जो अनेकांत स्वरूप है उसको न जानते हुए उसमें से एक का अभाव करके एक को ग्रहण करेगा तो एकांत हो गया। और जहां एकांत होता है वहां उस जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। वस्तु के संबंध में एकांत विचार ग्रहण करना ये मिथ्यात्व है। जैन धर्म का मिथ्यात्व क्या है? किसी भी विषय में विचार करते हुए उसको, उसके एक अंग को ग्रहण किया और दूसरे अंग को अभाव ही कर दिया, वो है ही नहीं ऐसा मान लिया, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, नकार दिया। जैसे अग्नि शीतल ही है तो एक को नकार दिया और एक को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि ही लगा दिया। ही लगाने की वजह भी लगाते तो तो हमारा ज्ञान मिथ्या नहीं होता। जल शीतल भी है, ठीक है, भी कहने से और कुछ है इसके लिए मार्ग आपने खोल के रखा है, और कुछ है उसको हम अभी नहीं बता रहे हैं। हम इतना ही बता रहे हैं कि जल शीतल भी है तो और भी कुछ है ये बताना चाहते, तो और भी कुछ है इसको जब बताना चाहते हैं तो वहां पर अनेकांत के लिए आपका विचार या आपके विचारधाराएं अनेकांत की ओर जाने के लिए एक मार्ग खोल के रख दिया, और ही लगा के तो एकांत होता, मतलब अभाव होता, यानी आदमी कभी जल कभी उष्ण हो ही नहीं सकते, शीतल ही है तो फिर उष्ण होने का सवाल ही नहीं उठता। जल की अग्नि, जल जो है उष्ण भी होता है और शीतल भी होता है। तो जब जल के बारे में ऐसा सोचते हैं तो अग्नि के बारे में क्या सोचा जाए? अग्नि को सर्वथा सर्वथा उष्ण ही माने क्या? अग्नि को सर्वथा उष्ण ही माने क्या? अग्नि ठंडी भी है ऐसा कथन नहीं हो सकता? जगह नहीं है क्या कथन के लिए? जगह है क्या? नहीं है। अग्नि कैसे ठंडी होगी? ये धधकती अग्नि उष्ण है, उसमें ठंडापन क्या चीज? ठंडापन पक्ष को स्वीकार करना,
कम हो जाएगा, कम हो जाए तो ठंडा हो
जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अब लास्ट में बुझ जाएगा। पुद्गल द्रव्य के चार लक्षण आप लोगों को मालूम है, क्या क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ठंडा और उष्ण ये किस गुण के अंदर आएगा? स्पर्श। स्पर्श गुण के परे आएगा। तो पुद्गल वस्तु ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। अग्नि पुद्गल है क्या? नहीं। जल पुद्गल है क्या? नहीं। दोनों पुद्गल हैं, और दोनों पुद्गल हैं तो पुद्गल का लक्षण ही है उसमें स्पर्श के आठों गुणों का होना। शीत है तो उष्ण भी है, तो अग्नि जब बहुत तेज रहेगी तब गर्म, थोड़ा सा तेजपन कम हो गया तो उतनी मात्रा में उसको ठंडा ही कहना पड़ेगा, उतने प्रमाण में वह अग्नि ठंडी है यही कहना पड़ेगा। पानी का भी ऐसा ही है, पानी का ओरिजिनल स्वरूप देखना चाहो तो फिर बर्फ ही है, वो जीरो सेंटीग्रेड जिसमें उष्णता वो है जल, वास्तविक जल जिसमें बिल्कुल उष्णपना नहीं है, फिर भी उसमें उष्णपना उत्पन्न होने की शक्ति है क्या? नहीं है। जल बर्फ भी बन जाए तो भी वह अपने स्वभाव को बदल सकता है, अभी शीत है तो उष्णता के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए अनेकांत स्वरूप है। अग्नि ठंडी भी है गर्म भी है, जल ठंडा भी है और गर्म भी है। जीव संसारी है, एकांत है क्या? नहीं, इसमें भी अनेकांत। जीव मुक्त भी हो सकता है, इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का धर्म भी शक्ति भी उसमें है। मोक्ष प्राप्त करने का गुणधर्म भी उसमें पाया जाता है। मोक्ष जाने की यह शक्ति भी धर्म है, उसमें दोनों प्रकार का धर्म है। संसार करने का भी उसमें धर्म है और मोक्ष जाने का भी उसमें धर्म है। परंतु संसारी रहेगा तो संसारी जीव को हम संसार करते हुए उसको धर्म नहीं कहते, अधर्म कहते हैं। ये शुद्धत्व की अपेक्षा से अधर्म कहा, लेकिन अनेकांत की दृष्टि से जब हम कथन करते हैं, अनेकांत से यही कहा जाता है संसार भी धर्म है और मोक्ष प्राप्त करना भी धर्म है। धर्म यानी यहाँ शक्ति, जीव के पास संसार करने की भी शक्ति है और मोक्ष जाने की भी शक्ति है, दो शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों को धर्म कहा है, एक नेगेटिव धर्म एक पॉजिटिव धर्म, एक विरुद्ध धर्म और एक अविरुद्ध धर्म, ऐसे दो धर्म होते हैं, दो धर्म। तो चलते अनेकांत का स्वरूप क्या बताया, अनेक का अर्थ है नाना और अंत का अर्थ है धर्म अथवा स्वभाव। वस्तु के परस्पर विरोधी अनेक गुणधर्मों के सद्भाव को स्वीकार करने वाले दृष्टि को अनेकांत कहते हैं। वस्तु में अनेक गुणधर्म हैं, अनेक गुणधर्मों को ग्रहण करने वाली जो दृष्टि है उसको अनेकांत कहते हैं। ग्रहण करने वाली दृष्टि, सबको ग्रहण करने वाली दृष्टि अनेकांत दृष्टि और एक को ग्रहण करने वाली दृष्टि एकांत दृष्टि। जैसे वस्तु नित्य अनित्य एक अनेक आदि धर्मों से युक्त है, कोई भी वस्तु छह द्रव्य हैं, ये सभी वस्तु हैं, छह द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। नित्य कैसे हैं? पुद्गल द्रव्य नित्य है किस अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से। पुद्गल द्रव्य का नाश नहीं है, कोई एक परमाणु भी आज तक नष्ट नहीं हुआ, यानी अभाव को प्राप्त नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। इस संसार में जितने पुद्गल परमाणु हैं उतने ही हैं, एक न घटा एक न बड़ा, जितने हैं उतने ही, जितने हैं उतने ही हैं। ये कहा जाता है ना, और है इसलिए कहा जाता है ना, वो जैसा है वैसा ही कहा जा रहा है ना। तो एक भी घटा नहीं और एक भी बड़ा नहीं, इसका मतलब उद्गल द्रव्य नित्य है। अगर एक परमाणु का दो परमाणु हो जाते तो अनित्य हो जाता, ऐसा होता नहीं है। जितना है जितनी संख्या में है उतनी ही है द्रव्य, तो इसका मतलब प्रत्येक परमाणु नित्यत्व गुणधर्म को स्वीकार करता है, स्वीकार करता हुआ रहता है, वह नित्य है। अनित्य किस अपेक्षा से? अनित्य यानी नाशवान, नाशवान भी है, नित्य भी है और नाशवान भी है। अनित्य ने नाशवान और नित्य ने शाश्वत, तो अनित्य कैसे है विचार करो, पर्याय की अपेक्षा से। कैसे पर्याय की अपेक्षा से? कौन सी पर्याय? जैसे पुद्गल द्रव्य है, इसकी कौन सी पर्याय?
पानी हो गया,
ये पानी मूल द्रव्य है और बर्फ उसके बाद बनी पर्याय है। पुनः बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है, पुनः बर्फ बन सकता है, पानी गर्म भी हो सकता है, नित्य रूप से वह शीत ही नहीं रहता, शीतल गुंडन को स्वीकार करके ही नहीं रहता। पर्याय देखो, शीतपना भी पर्याय और उष्णपना भी पर्याय, एक अवस्था है। वो जो अवस्था होती है उसी को पर्याय कहते हैं। एक काल में वह ठंडा रहा, ये अवस्था हो गई, और वही जल गर्म हो गया तो ये भी एक अवस्था हो गई। दोनों ये अवस्थाएं पर्याय कहलाती हैं। वह जल सदा 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 काल के लिए ठंडा ही रहे, तो उस पर्याय को नित्य कह सकते थे, शीतल पर्याय को नित्य कह सकते थे। लेकिन शीतल पर्याय भी नित्य नहीं है, स्पर्श गुण नित्य है। शीतलता उसकी पर्याय है, स्पर्श यह गुण है, गुण की अपेक्षा से नित्य है। चार ही गुण रहेंगे, जब कभी भी देखो पुद्गल में चार ही गुण रहेंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण। और स्पर्श में उष्णता भी है और शीतलता भी है, पानी भी पुद्गल है और अग्नि भी पुद्गल है, और अग्नि गर्म है ये उसके पर्याय है, जल शीतल है ये उसके पर्याय है। किस गुण की पर्याय? स्पर्श गुण की पर्याय। पानी अपने स्पर्श गुण के द्वारा शीतल है, तो शीतलता पर्याय हो गई, और जल द्रव्य हो गया, और स्पर्श गुण ये गुण हो गया। द्रव्य गुण और पर्याय, देखो जल क्या हो गया? द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, जल पुद्गल द्रव्य। अब उस पुद्गल द्रव्य का स्पर्श ये गुण हो गया, और उस स्पर्श गुण से जल कैसा है? शीतल है, ये पर्याय है। अब वही जल गर्म हो गया तो पर्याय चेंज हो। पर्याय शाश्वत नहीं होती, गुण शाश्वत होता है और द्रव्य भी शाश्वत होता है। जो सामान्य गुण है वो शाश्वत है, जो सामान्य गुण है वो शाश्वत है। कौन सा सामान्य गुण? स्पर्श, ये सामान्य गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण। उसके अपेक्षा से, होने की अपेक्षा से, ऐसे ही आत्मा में घटित करो। आत्मा कभी नष्ट हुई है क्या? इसलिए नित्य है। परंतु आत्मा कितने पर्यायों को धारण करती 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 चली आ रही है, कभी नारकी बना, कभी त्रिरिंच बना, कभी मनुष्य बना, कभी देव बना, किन किन पर्यायों को धारण नहीं किया, कितने कितने विचारों को नहीं किया, विचारों में कितना परिवर्तन किया है। जैसे कल जैसे आप थे आज वैसे नहीं है, ये सही है कि गलत है? कल जैसे आप थे आज वैसे नहीं है, कल छोटे थे आज बड़े हैं,
कल मिथ्या थे आज सम्यक।
हाँ, कल मिथ्या तो थे आज सम्यक स्वरूप हैं, कल असही में थे आज सही में हैं। वहां से यहां, घर से यहां तक आए हैं, घर में छोटे थे यहां आके बड़े बन गए, कितने घंटे बड़े बन गए? तो 3:30 बजे आए थे, 4:30 बज गए, 1 घंटे बड़े हो गए आप। तो आपके शरीर की पर्याय में चेंजेस अवश्य, छोटे थे बड़े। अब बड़े बनने की ओर ही जाते रहते हैं, छोटे बनने की ओर जाता है क्या कोई? नहीं, रिवर्स नहीं होती गाड़ी है, आगे आगे बढ़ती है। पर्याय निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। प्रति समय आत्मा से निकलने वाली पर्याय परिणामशील है, वो सब नश्वर है। एक समय में जो पर्याय है वो एक समय के लिए ही वह उसकी अवधि है, उतने समय के लिए वह पर्याय रहती है, इसके बाद अवश्य वो मिट जाती है। पर्याय का काल कितना?
एक समय।
जीवन काल एक समय। उत्कृष्ट काल आपको जितनी आयु मिली है उतनी। जीवन काल एक समय, आप शरीर मनुष्य बन गए, शरीर मिल गए, मनुष्य शरीर। प्रति समय आपका शरीर परिवर्तनशील होता जा रहा है, लेकिन यह शरीर जो पहले था अभी भी है, वही पर्याय। मनुष्य पर्याय चेंज नहीं हुई, तो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय जन्म से लेकर अब तक वही शरीर है, वही पर्याय है। पर्याय चेंज नहीं हुए, हम कहीं देव नहीं बने, नारकी तिरंज नहीं बने, वही मनुष्य शरीर है। इसलिए पर्याय जन्म से लेकर जन्म के टाइम में जो था थी वो अभी भी वही है, मनुष्य पर्याय। किंतु इसमें जो प्रति समय का परिणमन है वो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एक स्थूल पर्याय और एक सूक्ष्म पर्याय। स्थूल पर्याय दिखाई देती है, सूक्ष्म पर्याय दिखाई नहीं देती, इंद्रिय गोचर भी नहीं है। वो सेकंड कांटा घूमती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन घंटे की कांटा बिल्कुल दिखाई नहीं देती चलती हुई। मिनट की कांटा कभी कभी थोड़ा सा खिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन घंटे की कांटा तो बिल्कुल ही चलती है ऐसा लगता भी नहीं, स्थिर लगता है। है तो पर्याय वो भी, घंटे की कांटे को चलते हुए देखने की क्षमता हमारे पास नहीं है, लेकिन चल तो रहा है। कितना धीरे धीरे चल रहा है वो सूक्ष्म, और हम कितने धीरे 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 बड़े होते आए। जन्म के टाइम में कितने थे? एक फुट डेढ़ फुट के थे। हमारा शरीर बढ़ता रहा कि नहीं? बढ़ता रहा, लेकिन बढ़ते हुए कभी देखा आपने? एक साल के बाद पता चला कि अरे हम तो 6 इंच बड़े हो गए, 1 फुट बड़े हो गए। सूक्ष्म परिणमन दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म पर्याय दिखाई नहीं देती, स्थूल पर्याय दिखाई देती। मनुष्य शरीर दिख रहा है, ये स्थूल पर्याय, लेकिन मनुष्य शरीर प्रति क्षण बढ़ता जा रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? हम प्रतिक्षण बड़े हो रहे हैं, हमारे में प्रतिक्षण परिवर्तन आ रहा है, ये दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। दिखाई नहीं देता है तो क्या उसको असत्य माने? नहीं देता है, वो है ही नहीं, ऐसा कह सकते? क्योंकि ये सत्य है कि हम छोटे से बड़े हुए हैं, परिणमन के बिना हम बड़े नहीं हुए हैं, ये सत्य। परिणमन के बिना कोई बड़ा नहीं होता, ये सत्य है कि नहीं? इसलिए हम उसको मानना ही पड़ता है कि सूक्ष्म पर्याय भी है, स्थूल पर्याय के साथ साथ सूक्ष्म पर्याय भी है। स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय ऐसा अरहंत भगवान ने कहा है, व्यंजन पर्याय, और सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय ऐसा कहा, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय ऐसा नाम दिया है। जैसे उसमें आया था ना बादर और सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीरधारी जीव दिखते नहीं, बादर शरीरधारी जीव दिख भी सकते और नहीं भी दिख सकते। बादर शरीर वाले भी ऐसे हैं जो दिखने योग्य नहीं है, वो सूक्ष्म तो अपने इंद्रिय गोचर इंद्रिय के विषय ही नहीं है, इतने सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव होते। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये बादर भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। सूक्ष्म जो होते हैं सर्वत्र लोक में पाए जाते हैं, किंतु बादर जो होते हैं वो किसी जगह है भी और नहीं भी। आस्था और कायिक जीव अनेकांत अनेकांत यह वस्तु का सिद्धांत कहलाता है। उस सिद्धांत को समझने के लिए कुछ समझने की एक विधि जिसको कहना चाहिए समझने की एक पद्धति अरहंत भगवंतों ने कहा है, उस पद्धति का नाम ही है शाद्वाद विधि। शाद्वाद को भी सिद्धांत ही कहा है क्योंकि सिद्धांत को व्यक्त करने वाला कथन भी सिद्धांत कथन है, सिद्धांत वाला ही कथन है। किसी भी द्रव्य के सिद्धांत को पूर्णतः स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए जो विधि विधान पाया जाता है, उस विधि विधान भी सिद्धांत का प्रतिपादक होने से वह भी सिद्धांत है, प्रतिपादक है। जैसे समय शिखर जी होकर के आए, तीर्थ यात्रा करके आए तो लोग उनका पैर पड़ते हैं। जो यात्रा करके आए उन्होंने तो अरहंत भगवान की वंदना करके आए, सिद्ध भगवंतों की वंदना करके, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके आए, इनका पैर क्यों पड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यानी वहां जाकर के आने के बाद, वहां जाकर के आने के बाद व्यक्ति भी वंदनीय बन जाता है, यानी उनकी आत्मा नहीं, उनके पैरों में वो धूल चिपका हुआ है। वो धूल चिपका हुआ है इसलिए पैर छू लेते हैं। धन्य है आप तो तीर्थ यात्रा करके आए, हम नहीं जा पाए, हम भी अवश्य वहां पर होकर के आएंगे, परंतु वहां पर होकर के आप आ गए इसलिए हम आपको अरहंत नहीं मान रहे हैं, अरहंत के धूलिकण यहां लग रहे हैं इसलिए आपको हम पैर छू करके वंदना कर रहे हैं। ऐसे ही सिद्धांत तो अनेकांत सिद्धांत है, परंतु शाद्वाद को भी सिद्धांत इसलिए कहा कि उस अनेकांत सिद्धांत को व्यक्त करने का सामर्थ्य जो होता है वो शाद्वाद सिद्धांत में होता है, इसलिए इसको भी सिद्धांत कहा। वस्तुतः शाद्वाद कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, धर्म नहीं है। जो पदार्थ है, धर्म है, वस्तु है, उसको कथन करने का एक शैली माध्यम है, विधि है। इस विधि को भी सिद्धांत का, विधि में कहां सिद्धांत आएगा? सिद्धांत का यह कथन करता है, वस्तु के सिद्धांत का यह कथन करता है, इसलिए शाद्वाद सिद्धांत कह दिया। शाद्वाद सिद्धांत, शात का अर्थ है विवक्षा, शाद्वाद जो शब्द बना है ना उसको ध्यान में रखना है, उसमें दो शब्द हैं शात और वाद। जैसे अनेकांत में दो शब्द थे अनेक और अंत, अनेकांत दोनों मिला करके बना दिए, ऐसे ही शात और वाद। वाद शब्द व सामने आने से पीछे का त जो है द हो जाता है, ये व्याकरण है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा व्याकरण क्या है, ये त था और द क्यों हुआ आप पूछ सकते हैं, तो ये तो व्याकरण है। त भी द हो जाता है जब सामने व आता है, तो त को भी द किया जाता है, शाद्वाद बन गया। शाद्वाद का अर्थ क्या है यहाँ बताया जा रहा है, शाद का अर्थ है विवक्षा और वाद का अर्थ है कथन। वाद कहते हैं ना, वाद करो यानी बोलो, कथन करो, कुछ कहो, तो वाद का अर्थ है कथन और शात का अर्थ है विवक्षा। विवक्षा यानी संदर्भ, अपेक्षा, किसी अपेक्षा से ये ऐसा, किसी अपेक्षा से ये ऐसा, ऐसा समझने के लिए, समझाने के लिए जो विवक्षा होती है, संदर्भ होता है, अपेक्षा होती है, उसको कहते हैं शात। साक्षात का अर्थ है विवक्षापवाद का अर्थ है कथन, अर्थात किसी अभिप्राय से अथवा दृष्टि विशेष से एक धर्म का कथन करने वाली शैली शादवाद है। जैसे द्रव्य की दृष्टि से वस्तु नित्य है, पर्याय की दृष्टि से वस्तु अनित्य है, यही शादवाद कथन है। कथन करते समय हम यदि द्रव्य के पूरे गुणधर्मों को न जानते हुए हमको जितना दिखा उतना ही ग्रहण कर लिया और उसमें एकांत पकड़ लिया, क्या है ये पुद्गल वस्तु दिख गया, माइक है, माइक है, तो हाथ लगा के देखा ये ठंडा भी है और बहुत कठोर है, नरम बिल्कुल नहीं है। माइक को कठोर और ठंडा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं है, कठोर है और ठंडा है, बस दो दिखाई दिए, समझ में आया उसको पकड़ लिया। लेकिन ये माइक केवल ठंडा ही है क्या? नहीं है। कठोर ही है क्या? नहीं है। ये नरम भी है, ये नरम भी है, कठोर ही ऐसा नहीं, नरम भी है, और ठंडा ही ऐसा नहीं, ये गर्म भी है, क्योंकि ये पुद्गल वस्तु है। पुद्गल वस्तु में नरमपना भी होता है और ठंडापना भी होता है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे प्रश्न आता है। वर्तमान में तो ये कठोर दिख रहा है लेकिन यह स्वचतुष्टय की अपेक्षा से कठोर है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से ये कठोर नहीं है, नरम है। पर चतुष्टय क्या? इसके सामने हम एक ये रखते हैं, ये पुद्गल, ये भी पुद्गल है और एक वज्र है, वज्र हीरा, हीरा कठोर क्या? ये कठोर हीरा कठोर, वो भी पुद्गल और ये भी पुद्गल, तो हीरे की अपेक्षा से यह नरम है और हीरा कठोर है। पर चतुष्टय को लेकर के यानी हीरा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव ऐसा लगाया जाता है, ये स्वचतुष्टय कहलाता है। हीरा अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वह कठोर है तो नरम भी है, क्योंकि उसमें नरम बनने की भी योग्यता है, शक्ति है, नरम भी बन सकता है, क्योंकि वो भी पुद्गल परमाणु है, किसी दिन पलट खा सकते हैं और उसमें नरमपना भी है। लेकिन नरमपना होने के लिए वो अन्य पर्याय हो गई, तो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल की अपेक्षा से हीरा कठोर भी और नरम भी, माइक भी कठोर और नरम दोनों चीजें, ऐसा साधवाद कथन होता है स्वचतुष्टय की अपेक्षा से। बहुत अच्छी तरह से घटित करके और समझेंगे अपन, पूरा पढ़ लेते हैं, हो गया। द्रव्य की दृष्टि से वस्तु नित्य है, पर्याय की दृष्टि से वस्तु अनित्य है, ये साधवाद कथन है। द्रव्य की अपेक्षा से ये नित्य माइक नित्य, किस अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से। माइक अनित्य, किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से। आज माइक है, कभी ना कभी किसी दिन खराब होगी क्या नहीं, टूटेगा क्या नहीं, पिघलेगा क्या नहीं, जलेगा क्या नहीं, क्या ऐसा ही रहेगा? ऐसा ही रह जाए तो अनंत काल तक इसी माइक को लोग उपयोग करेंगे,
नित्य हो जाएगा,
नित्य हो जाएगा, पर्याय भी नित्य हो जाएगी। पर्याय को हम नित्य नहीं बना सकते, ये बात ठीक है कि कल भी यही माइक थी, आज भी यही माइक, और 3.5 महीने तक यही माइक रहने वाली है, 3.5 महीने तक तो नित्य है, ये व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से नित्य है, परंतु यह मायक जैसे कल थी आज नहीं है। इसकी आयु कम हो गई, हाँ पुरानी हो गई, सेकंड हैंड हो गया, और ये परिणामशील है। और किसी दिन यह मायक जैसे आज काम दे रहा है, कल के दिन देने वाला नहीं, इसके मतलब इसमें परिवर्तन आ गया, इसके गुणधर्म, इसके लक्षण, इसका इसमें काम करने की जो शक्ति है उसमें निरंतर परिणामशीलता है, इसलिए ये पर्याय व्यंजन पर्याय होकर के भी सूक्ष्म पर्याय परिणामशील है, इसलिए मायक एक दिन मिटे। ये अनेकांत है। एक और उदाहरण इसके लिए दिया जा सकता है। राम लव कुश की अपेक्षा से कौन है? पिता। तो पिता ही है क्या? हाँ, एक कथन भी करना है, हाँ? कथन भी करना है और अनेकांतता को भी दर्शाना है, अनेकांतता को भी स्वीकार, अनेकांतता को स्वीकार किए बिना शाद्वाद कथन को हम कर ही नहीं सकते। अनेकांतता को पहले स्वीकार करना चाहिए, वस्तु अनेकांतात्मक है, ये स्वीकार हुए बिना कथन में समीचीनता नहीं आ सकती। जैसे राम लव कुश सामने खड़े हैं, लव कुश से पूछा जाता है ये कौन है? वो सांप कहते हैं हमारे पिताजी। राम से भी पूछो ये कौन है, आप इनके लिए क्या होते हैं? ये हमारे पुत्र हैं और इनके हम पिता। तो बस दो ही संबंध है क्या राम के साथ? वस्तु केवल पिता रूप में ही है क्या? नहीं है। और क्या क्या हो सकती वस्तु? पति भी हो सकता है राम, पति हो सकता है तो किसकी अपेक्षा से हो सकता है? तो पत्नी की अपेक्षा से पति। पुत्र भी हो सकता है राम, तो पिता की अपेक्षा से पुत्र भी है। और राम दामाद भी हो सकता है, किसकी अपेक्षा से? उनके ससुर की अपेक्षा से। तो राम क्या क्या नहीं है? राम भाई भी है। तो एक ही राम नामक चेतन वस्तु व्यक्ति भाई भी है, पिता भी है, दामाद भी है, पुत्र भी है, पति भी है, हा? ये सब कुछ है। तो जो कुछ है उसको स्वीकार करना पड़ेगा क्या नकारना पड़ेगा? एक आध नकार तो देखेंगे, राम दामाद है नहीं, दामाद नहीं है तो फिर लव कुश कहां से आ गए? दामाद बने तो लव कुश नहीं आ सकते, तो ऐसी शंकाएं होती है। तो एकांत पकड़ेंगे तो संशय में पड़ना पड़ता, शंकाएं बहुत उत्पन्न होंगी। हाँ, राम किसकी अपेक्षा से पिता हैं? अब शाद्वाद कथन आ गया। देखो राम पिता हैं, पुत्र हैं, ये सब अनेकांत हो गया, ये सब अनेकांत हो गया। राम क्या क्या हैं? ये सब अनेकांत हो गया। जो भी उत्तर दोगे सब अनेकांत। अब शाद्वाद क्या है? शाद्वाद कथन उस राम के संबंध में क्या क्या कैसे कथन करता है इसको समझेंगे। चलो शाद्वाद, शांत यानी विवक्षा और वाद यानी कथन। तो किसी दृष्टि से राम ऐसा है ये है, किसी दृष्टि से राम ये है, इस प्रकार की जो कथन शैली होती है इसका नाम है शाद्वाद। शाद्वाद चर्चा करें। अब देखो राम पिता हैं, ठीक है क्या? नहीं, पितृत्व गुण तो उनमें है, राम पिता नहीं है, ये भी कहना पड़ेगा। ये शांतवाद कथन की शैली जो है उसके विरुद्ध भी कहना पड़ेगा। राम पिता हैं, ये तो लोग उसके अपेक्षा से पिता हैं, तो राम पिता नहीं है ऐसा कथन भी करना पड़ेगा ये पर की अपेक्षा से। जैसे लोग उसके दोस्त खड़े हैं दो, वो किसके पुत्र हैं? राम के क्या नहीं, वो भी पुत्र हैं, ये भी पुत्र हैं, लव कुश भी पुत्र हैं, परंतु वो पुत्र राम के पुत्र हैं क्या? नहीं है। तो राम पिता नहीं है किसकी अपेक्षा? पर पुत्रों की अपेक्षा से। ये पुत्र राम के नहीं होने से राम इनके पिता नहीं हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। नहीं है, सत्य है। क्या सत्य है? ये राम पिता नहीं है कह रहे हैं, राम पिता नहीं है ये कथन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है क्या? बिल्कुल कथन बन ही नहीं सकता, बन रहा है, परंतु किसकी अपेक्षा से? ये विवक्षा जो है वो शाद्वाद है। यहां विवक्षा आती, ये विवक्षा शाद्वाद है। किसकी अपेक्षा से? राम पिता नहीं है तो फिर लवकुश तो दिख रहे हैं, ऐसा कहेगा कोई तो? ठीक है, लवकुश दिख रहे हैं लेकिन ये राम के पुत्र हैं, इसलिए राम पिता हैं, लेकिन राम पिता नहीं है कहना ये लवकुश की अपेक्षा से नहीं किंतु पर पुत्रों की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। पिता नहीं है पर चतुष्टय की अपेक्षा। यहाँ चतुष्टय का प्रयोग होता है। चतुष्टय कौन कौन से? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। राम पिता, स्वक्षेत्र में वो पिता है, स्वक्षेत्र में अपने क्षेत्र, अपनी मर्यादा, अपने पुत्र, अपनी जगह वो पिता है, अपनी जगह वो पिता है, स्वक्षेत्र की अपेक्षा से पिता है। स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वकाल की अपेक्षा से पिता। स्वकाल लगाना पड़ेगा, स्वकाल। काल क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल में इनके पुत्र कौन है? लवकुश। तो स्वकाल अपनी काल की अपेक्षा से और पुत्रों का काल भी वर्तमान काल, इस अपेक्षा से राम पिता हैं। ये स्वक्षेत्र, स्वकाल। स्वभाव, राम पिता हैं तो उनके भाव कैसे रहेंगे? लवकुश के प्रति पितृत्व के भाव रहेंगे या पुत्रत्व, पुत्रत्व के भाव रहेगा?
लवकुश के।
हाँ, लवकुश के अपेक्षा से जब भाव बनेंगे उनके, मैं पिता हूँ ये पुत्र हैं, वो स्वयं मानेगा कि नहीं ये लवकुश को देख करके मैं पिता हूँ, कहना मैं पिता नहीं हूँ इनका, ऐसा मानेगा? तो भाव जो रहेंगे स्व के, स्व पुत्रों की अपेक्षा से स्व भाव जो रहेंगे वो पिता के ही रहेंगे। ये हो गया स्व भाव, हो गया स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य। स्वद्रव्य यानी राम स्वयं द्रव्य हैं, पिता रूप द्रव्य हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये हो गया। अब पर का समझेंगे। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, इन चारों की अपेक्षा से राम पिता नहीं है ऐसा ही सिद्ध होगा। वो पुत्र खड़े हैं, लवकुश के दोस्त हैं दोनों, वे उनकी अपेक्षा से पर क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र में जन्मा नहीं, पर क्षेत्र में जन्मा, वो जहां जन्मे हैं वहां, तो पर क्षेत्र की अपेक्षा से ये पिता नहीं है। ये पर क्षेत्र के पुत्र हैं, इनके अपेक्षा से राम पिता नहीं है। क्षेत्र, काल, पर द्रव्य, पहला द्रव्य लगा दो, पर द्रव्य, वो पर द्रव्य है, दोस्त दोनों वो पर द्रव्य है, उस पर द्रव्य की अपेक्षा से पिता नहीं है क्योंकि वो इनके पुत्र नहीं है। क्षेत्र हो गया काल, पर काल इस वर्तमान काल में, इस वर्तमान काल में वह पर द्रव्य है, तो उनका काल भी पर है। उस पर काल की अपेक्षा से राम पुत्र नहीं, पर भाव, पर का भाव, पर भाव, ये दोनों पुत्र पर भाव हैं। उनको देख करके ये मेरे पुत्र हैं ऐसे भाव आ सकते हैं? नहीं आ सकते, इसलिए पर है वो। पर भाव की अपेक्षा से पर भाव ही उत्पन्न होते हैं, स्वभाव की अपेक्षा से स्वभाव ही उत्पन्न होते हैं। सौ पुत्रों को देखते ही अपने पुत्र, और पर पुत्रों को देखते ही ये पर हैं ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो पर पुत्रों की अपेक्षा से, पर भाव की अपेक्षा से पर पुत्रों को देखकर राम कभी भी ये अनुभव नहीं कर सकते कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र नहीं हैं, यही कहेगा राम, ये मेरे पुत्र नहीं हैं। तो राम पिता नहीं हैं भाव की अपेक्षा से। तो किन भावों की अपेक्षा से? पर पुत्रों को देख करके जो भाव उत्पन्न होंगे उस भाव की अपेक्षा से राम पिता नहीं हैं, ये सिद्ध होता है। ये हो गया, ये अस्थि कथन हो गया। शाद्वाद जो है सप्तभंगी कहलाता है, शाद्वाद सात प्रकार से कथन करता है, पर द्रव्य स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा से हम इस समय अस्थि कथन कर चुके, अब नास्तिक कथन करना पड़े। नास्तिक कथन पर चतुष्टय की अपेक्षा से ही लगाना, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि कथन, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तिक कथन। टाइम हो गया, कल विस्तृत चर्चा करेंगे कैसे घटित करना इसको, सातों कथनों को कैसे घटित करते हैं इसका विस्तृत चर्चा करेंगे।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से